एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
ताकि मैं हर जंग घुटन सपनों में आके जीतूं तेरे नाम से, जीवन की हर घड़ी संघर्ष है
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उसे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं और हम तेरी उपासना करते हैं। पिता, हम तेरे पास आते हैं, अभी हम तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं और सीखने जा रहे हैं। हमारे मनों को खोल दे, विशेषकर हर एक श्रोताओं के संग हो पिता। उन्हें तेरा पवित्र आत्मा के द्वारा मदद कर कि वे तेरे वचनों को सुने समझे और तेरे राह में चलने सके पिता। और मेरे संग हो तेरा पवित्र आत्मा दे, ताकि मैं तेरे वचनों को, तेरे संवाद को तेरे सामर्थ के द्वारा प्रस्तुत कर सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है शब्द का अर्थ। शब्द का व्यापक महत्व है और यह गहरी और समृद्ध आध्यात्मिकता से भरा है। पहला है सृष्टि का एक निरंतर स्मारक। शब्द है सृष्टि का निरंतर स्मारक। जैसा कि हमने देखा है, 10 आज्ञाओं का मूलभूत महत्व शब्द से जुड़ा हुआ है कि यह संसार की सृष्टि को यादगार बनाता है। निर्गमन 20:11-12, 7वें दिन को सब्बत के रूप में पालन करने का आदेश सृष्टि के कार्य से अविभाज्य रूप से जुड़ा हुआ है। सबत संस्थान एवं इसको पालन करने का आदेश सृष्टि के कार्य का सीधा परिणाम है। इसके अलावा संपूर्ण मानव परिवार अपने अस्तित्व का श्रेय सृष्टि के दिव्य कार्य को इस प्रकार एक स्मारक बनाने के लिए देता है। तदनुसार परमेश्वर की रचनात्मक शक्ति के स्मारक के रूप में सबत की आज्ञा का पालन करने का दायित्व पूरी मानव जाति पर है। संग सबत को उसके रचनात्मक कार्यों के लिए परमेश्वर द्वारा नियुक्त स्मारक के रूप में एक निरंतर दायित्व कहते हैं। वे जो सृष्टि के अनुस्मारक के रूप में इसका अनुपालन करते थे, वे ऐसा कृतज्ञतापूर्ण स्वीकृति के रूप में करते थे कि परमेश्वर उनका सृष्टिकर्ता एवं उनका असली प्रधान था, कि वे उसके हाथों की कृति व उसके अधिकार की प्रजा थे। इस प्रकार यह संस्था पूर्ण रूप से स्मारक थी एवं समस्त मानव जाति को दी गई थी। इसमें कुछ भी अस्पष्ट नहीं था या किसी के लिए भी प्रतिबंधित उपयोग नहीं था। और जब तक हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, क्योंकि वह हमारा सृष्टि करता है, तब तक सबत सृष्टि के स्मारक चिन्ह के रूप में कार्य करता रहेगा। दूसरा है छुटकारे का एक प्रतीक। जब परमेश्वर ने इसराइलियों को मिस्र में गुलामी से छुड़ाया, सबत जो पहले से ही सृष्टि का स्मारक था, छुटकारे का भी स्मारक बन गया। व्यवस्था विवरण 5:15। प्रभु का इरादा था कि साप्ताहिक सबत का विश्राम यदि ठीक से मनाया जाए तो मनुष्य को लगातार एक मिस्र के बंधन से मुक्त करेगा, जो किसी देश या शताब्दी तक सीमित नहीं है, बल्कि जिसमें हर देश और हर युग शामिल है। मनुष्य को आज उस गुलामी से बचने की आवश्यकता है जो लालसाओं से, शक्ति एवं लाभ से, सामाजिक असमानताओं से एवं पाप व स्वार्थीपन से आती है। जब हम क्रूस को देखते हैं तो सबत का विश्राम छुटकारे के एक विशेष प्रतीक के रूप में प्रकट होता है। यह इमानुएल के नेतृत्व में पाप के बंधन से निकलने का स्मारक है। हमारे ऊपर सबसे बड़ा बोझ जो हम उठाते हैं हमारी अवज्ञा का अपराध बोध है। सबत का विश्राम कब्र में मसीह के विश्राम की ओर इशारा करते हुए पाप पर विजय का विश्राम मसीह विश्वासियों को मसीह की क्षमा, शांति और विश्राम को स्वीकार करने और अनुभव करने का एक वास्तविक अवसर प्रदान करता है। तीसरा अर्थ है पवित्रता का एक चिन्ह है। सबत परमेश्वर की परिवर्तनकारी शक्ति का एक चिन्ह है। शुद्धता व पवित्रीकरण का एक चिन्ह है। प्रभु ने घोषणा की, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। निर्गमन 31:13 कहता है, और इसका हम तुलना कर सकते हैं एजेकियल 20:20 से। सबत इस प्रकार पवित्रकर्ता के रूप में परमेश्वर का चिन्ह है। जैसे लोग मसीह के लहू द्वारा पवित्र किए जाते हैं इब्रानियों 13:12, सबत भी पापों की क्षमा के लिए विश्वासी द्वारा उसके लहू को स्वीकार करने का एक चिन्ह है। जिस प्रकार परमेश्वर ने सबत को पवित्र उद्देश्य के लिए अलग किया है, उसी प्रकार उसने अपने लोगों को एक पवित्र उद्देश्य के लिए अलग किया है, उसके विशेष गवाह बनने के लिए। उस दिन उसके साथ उनकी सहभागिता उन्हें पवित्रता की ओर ले जाती है। वे स्वयं के संसाधनों पर नहीं, बल्कि उन्हें पवित्र करने वाले परमेश्वर पर निर्भर रखना सीखते हैं। वह शक्ति जिसने सभी वस्तुओं की सृष्टि की, वह शक्ति है जो आत्मा को उसकी समानता में पुनः बनाती है। जो लोग सबत के दिन को पवित्र मानते हैं, उनके लिए यह पवित्रीकरण का चिन्ह है। वास्तविक पवित्रीकरण परमेश्वर के साथ सामंजस्य है। चरित्र में उसके साथ एकता है। यह उन सिद्धांतों की आज्ञाकारिता के माध्यम से प्राप्त होता है जो उसके चरित्र का प्रतिलेख हैं और सबत आज्ञा पालन का चिन्ह है। जो व्यक्ति अपने हृदय से चौथी आज्ञा का पालन करता है वह समस्त व्यवस्था का पालन करेगा, वह आज्ञाकारिता के द्वारा पवित्र किया जाता है। चौथा है वफादारी का एक चिन्ह। जिस प्रकार आदम और हवा की वफादारी की परीक्षा अदन की वाटिका के बीच में स्थित भले व बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा की गई थी, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य की वफादारी की परीक्षा शब्द की आज्ञा द्वारा की जाएगी जो 10 आज्ञाओं के मध्य स्थित है। शास्त्र प्रकट करता है कि दूसरे आगमन से पूर्व समस्त संसार 2 भागों में विभाजित किया जाएगा। वे जो वफादार हैं एवं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं वह यीशु का विश्वास रखते हैं, एवं वे जो पशु एवं उसकी मूर्ति प्रकाशित वाक्य 14:12-9 की आराधना करते हैं, उस समय परमेश्वर का सत्य जगत के सामने उजागर होगा और यह सभी के लिए स्पष्ट हो जाएगा कि पवित्र शास्त्र के 7वें दिन शब्द का आज्ञाकारी पालन सृष्टिकर्ता के प्रति वफादारी का प्रमाण देता है। पांचवा है संगति का एक समय। परमेश्वर ने पशुओं को मानवता का साथी होने के लिए रचा, उत्पत्ति 1:24-25। और उच्च स्तर की संगति के लिए परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे को दिया, उत्पत्ति 2:18-25। परंतु शब्द के द्वारा परमेश्वर ने मानवता को एक उपहार के रूप में उच्चतम प्रकार की संगति प्रदान की, उसके साथ संगति। मनुष्य को न केवल पशुओं के साथ न ही अन्य मनुष्यों के साथ संगति करने के लिए बनाया गया है, वे परमेश्वर के लिए बने थे। मनुष्य परमेश्वर के लिए बने हैं। शब्द के दिन हम विशेष रूप से अपने बीच परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। शब्द के बिना सब कुछ परिश्रम और बिना अंत के पसीना होगा। प्रत्येक दिन एक समान होगा दुनियावी कार्यों के लिए समर्पित। शब्द का आगमन मगर आशा, आनंद, उद्देश्य एवं साहस लाता है। यह आराधना, प्रार्थना, स्तुतिगान, वचन का अध्ययन व चिंतन और दूसरों के साथ सुसमाचार साझा करने के माध्यम से परमेश्वर के साथ वार्तालाप करने का समय प्रदान करता है। शब्द हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने का अवसर है। छठा है विश्वास के द्वारा धार्मिकता का एक चिन्ह। मसीही मानते हैं कि एक प्रबुद्ध विवेक के मार्गदर्शन के माध्यम से गैर मसीही जो ईमानदारी से सत्य की खोज करते हैं उनका पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था के सामान्य सिद्धांतों की समझ के लिए नेतृत्व किया जा सकता है, रोमियो 2:14-16। यह बताता है कि क्यों चौथी आज्ञा के अलावा अन्य 9 आज्ञाओं का मसीह धर्म के बाहर एक हद तक अभ्यास किया जाता है, लेकिन शब्द की आज्ञा के साथ ऐसा नहीं है। बहुत से लोग साप्ताहिक विश्राम दिन का कारण देख सकते हैं, लेकिन उन्हें अक्सर यह समझने में मुश्किल होती है कि कोई भी कार्य सप्ताह के अन्य किसी भी दिन किया जाए तो वह सही और सराहनीय क्यों होगा, परंतु 7वें दिन वही कार्य पाप क्यों है। प्रकृति हमें 7वें दिन के पालन के लिए कोई आधार नहीं प्रदान करती है। ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में चलते हैं, वनस्पति बढ़ती है, बारिश और धूप बारी बारी से होती है और पशु ऐसे चलते हैं जैसे हर दिन एक जैसा हो। तो फिर मनुष्यों को 7वें दिन शब्द का पालन क्यों करना चाहिए? मसीह के लिए केवल एक ही कारण है और कोई अन्य नहीं, परंतु वह कारण पर्याप्त है। परमेश्वर ने कहा है। केवल परमेश्वर के विशेष प्रकटन के आधार पर ही लोग 7वें दिन के पालन के औचित्य को समझ सकते हैं। जो लोग 7वें दिन का पालन करते हैं वे ऐसा मसीह में विश्वास एवं उस पर अप्रत्यक्ष भरोसे के कारण करते हैं जिसने इसके पालन की आज्ञा दी है। शब्द का पालन करने से विश्वासी अपने स्वयं के निर्णय पर निर्भर रहने के बजाय अपने जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करने की सहमति प्रकट करते हैं। सातवें दिन का पालन करने से विश्वासी स्वयं को धर्मी बनाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसके बजाय वे शब्द का पालन सृष्टिकर्ता व उद्धारकर्ता मसीह के साथ उनके संबंधों के फलस्वरूप करते हैं। शब्द का पालन धर्मी ठहराने एवं पवित्रकरण में उसकी धार्मिकता का परिणाम है। यह दर्शाता है कि वे पाप के बंधन से स्वतंत्र किए गए हैं एवं उन्होंने उसकी सिद्ध धार्मिकता प्राप्त कर ली है। एक सेब का पेड़ सेब फलने से सेब का पेड़ नहीं बनता है, उसे पहले सेब का पेड़ होना चाहिए, तब सेब एक प्राकृतिक फल के रूप में आते हैं। इसलिए एक सच्चा मसीह खुद को धर्मी बनाने के लिए शब्द या अन्य नौ नियमों का पालन नहीं करता है, बल्कि यह उस धार्मिकता का स्वाभाविक फल है जो मसीह उसके साथ साझा करता है। वह जो इस प्रकार से शब्द का पालन करता है वह विधिवादी नहीं है, क्योंकि बाहरी रूप से सातवें दिन का पालन करना विश्वासियों की धार्मिकता और पवित्रता के आंतरिक अनुभव को दर्शाता है। इसलिए एक सच्चा शब्द का पालन करने वाला परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए शब्द के दिन मना किए कार्यों से परहेज नहीं करता है, बल्कि इसलिए कि वह परमेश्वर से प्रेम करता है और उसके साथ घनिष्ठता के लिए शब्द को सबसे अधिक महत्व देना चाहता है। शब्द का पालन प्रकट करता है कि हमने अपने स्वयं के कार्यों पर निर्भर होना छोड़ दिया है, कि हम मानते हैं कि केवल सृष्टिकर्ता मसीह ही हमें बचा सकता है। वास्तव में शब्द पालन की सच्ची भावना यीशु मसीह सृष्टिकर्ता व उद्धारकर्ता के लिए एक सर्वोच्च प्रेम को प्रकट करती है जो हमें नए व्यक्ति में परिवर्तित कर रहा है। यह सही दिन को सही रूप में पालन करने को विश्वास द्वारा धार्मिकता का चिन्ह बनाता है। और सातवां है मसीह में विश्राम का प्रतीक। शब्द मिस्र से संसारिक कनान के विश्राम में जाने के लिए परमेश्वर द्वारा इज़राइल को छुड़ाने का एक स्मारक है, जिसने उस समय के छुड़ाए गए लोगों को आसपास के राष्ट्रों से अलग किया। उसी प्रकार शब्द पाप से परमेश्वर के विश्राम में जाने के लिए छुटकारे का चिन्ह है, जो छुटकारा पाए हुए लोगों को संसार से अलग करता है। वे सभी जो उस विश्राम में प्रवेश करते हैं जिसमें परमेश्वर उन्हें आमंत्रित करता है, परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। इब्रानियों 4:10 यह विश्राम आत्मिक विश्राम है, हमारे स्वयं के कार्यों से विश्राम, पाप की समाप्ति। यह वह विश्राम है जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को बुलाता है, और इसी विश्राम के दोनों शब्द और कनान प्रतीक हैं। जब परमेश्वर ने अपनी सृष्टि का कार्य पूरा किया व सातवें दिन विश्राम किया, तो उसने आदम व हवा को शब्द के दिन उसमें विश्राम करने का एक अवसर प्रदान किया। यद्यपि वे असफल रहे, फिर भी मानव जाति को विश्राम देने का परमेश्वर का मूल उद्देश्य अब भी नहीं बदला है। पतन के पश्चात शब्द उसी विश्राम के स्मारक के रूप में निरंतर चलता रहा। इस प्रकार सातवें दिन शब्द का पालन करना न केवल सभी वस्तुओं के सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर में विश्वास की गवाही देता है, बल्कि जीवन को बदलने और पुरुषों और महिलाओं को उस शाश्वत विश्राम में प्रवेश करने के लिए योग बनाने वाली उसकी शक्ति में विश्वास करने के लिए भी गवाही देता है, जिसे उसने मूल रूप से इस पृथ्वी के निवासी के लिए नियत किया था। परमेश्वर ने वास्तविक इज़राइल से इस आत्मिक विश्राम की प्रतिज्ञा की थी। इसमें प्रवेश करने में उनकी विफलता के बावजूद परमेश्वर का निमंत्रण अभी भी कायम है। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। इब्रानियों 4:9 के अनुसार वे सब जो इस विश्राम में प्रवेश करना चाहते हैं, पहले उन्हें विश्वास द्वारा अपने आत्मिक विश्राम में प्रवेश करना होगा। आत्मा का पाप से विश्राम या उद्धार पाने के स्वयं के प्रयासों से विश्राम। नया नियम मसीहों से अनुरोध करता है कि वे इस अनुग्रह एवं विश्वास के विश्राम का अनुभव करने के लिए प्रतीक्षा ना करें, क्योंकि आज इसमें प्रवेश करने का उपयुक्त समय है। इब्रानियों 3:13। वे सभी जिन्होंने इस विश्राम में प्रवेश किया है, यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा प्राप्त उद्धारक अनुग्रह, उन्होंने अपने स्वयं के कार्यों द्वारा धार्मिकता को प्राप्त करने के प्रत्येक प्रयास को छोड़ दिया है। इस प्रकार सातवें दिन के सबत का पालन करना एक विश्वासी के लिए सुसमाचार विश्राम में प्रवेश करने का प्रतीक है। तो चलिए हम इस सुंदर सबत का देन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, सुंदर स्मारक के लिए जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है, जो दिखलाता है कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, उस पर हम विश्वास करते हैं। यह सबत को मानने से हम मानते हैं कि परमेश्वर ही हमारा पवित्र करता है और परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार करता है, हमें पाप से छुड़ाता है, जिस तरह से उन्होंने इसराइलियों को मिस्र के बंदी या गुलामी से छुड़ाया। आइए हम परमेश्वर के स्वतंत्रता में प्रवेश करें, उसके धार्मिकता में प्रवेश करें और आइए हम परमेश्वर के संगति में रहे। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे, विशेषकर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे जो उसके वचनों को ध्यान से सुन रहे हैं। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर वचन के लिए। तूने शब्द को हमारे लिए एक स्मारक के रूप में दिया है कि हम याद करें तू ही हमारा सृष्टि करता है और तू हमारा बचाने वाला है, तू हमें पवित्र करता है, तू हमें अपना संगति में बुलाता है। पिता परमेश्वर हम तेरे राह में चलने वाले बने, हमें तू ज्ञान और बुद्धि दे और हमें तेरा पवित्र आत्मा भर दे। हम सबों को यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।